हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद चैप्टर नंबर टू श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्राधरन परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र का संकट। इस स्कंद के द्वितीय और तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान ने किस तरह चतुर्थ मनु के राज्य काल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जब हाथियों का राजा अपनी पत्नियों सहित जल विहार कर रहा था तो सहसा एक मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। कितना सौभाग्य है गजेंद्र का कि जब उसके प्राण संकट में आ गए तो उन्हें भगवान का स्मरण आया। वास्तव में आज मनुष्य के अंदर मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि नहीं है। जब उसके प्राण संकट में आते हैं तो उसे भगवान की याद नहीं आती बल्कि डॉक्टर्स की याद आती है ना। लेकिन ये भगवान ही हमें संकटों से बचा सकते हैं। तो भले ही भौतिक शरीर को की सुरक्षा करने के लिए हम भौतिक उपचार करें, लेकिन वास्तव में हृदय में सदैव हमें ये याद रखना चाहिए कि केवल भगवान ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो वो हाथियों का जो राजा था जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो अंतिम समय में उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरण कमलों पर। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ही ऊंचा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 माइल्स है। जब यह पर्वत त्रिकूट कहलाता है, त्रिकूट पर्वत की घाटी में एक सुंदर उद्यान है, मतलब एक बाग है उसकी घाटी में, जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वरुण देव ने बनाया था। इसको ऋतुमत क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर ऋतु में, हर सीजन में वहां पर हर सीजन के फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग सीजन में वो चीज नहीं मिलेगी, नहीं, हर टाइम पर हर चीज मिलती है वहां पर, हर फ्रूट्स और फ्लावर्स और सब सब कुछ मिलता है, इसलिए इसको ऋतुमत कहा जाता है। उस क्षेत्र में एक अत्यंत ही सुंदर सरोवर भी है। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार करने गया, जिससे जलचरों में हलचल मच गई। इससे उस सरोवर में के अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर झपटा मार दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1,000 वर्ष तक चलता रहा। उसमें ना तो हाथी मरा ना घड़ियाल, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। तब अपने को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन ना देखकर हाथी ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। तो ये था इस अध्याय का ओवरव्यू, संक्षिप्त में हमने इसको पढ़ा। अभी शुकदेव गोस्वामी हमें बहुत ही सुंदर रीति से इस चैप्टर के विषय में बताएंगे, और जब इस 8वें स्कंद का 4था अध्याय आएगा ना, 4th चैप्टर, उसमें भगवान बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं। वो मैं आपको अभी इसलिए बताऊंगी क्योंकि वो जब आप सुनोगे तभी आपको ये सारे श्लोक पढ़ने में रुचि होगी। तो 4थे अध्याय में ये वर्णन आता है कि जब भगवान गजेंद्र को मोक्ष प्रदान करके वैकुंठ जा रहे थे, उस समय गजेंद्र से भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भी इस कथा के हर वस्तु, यानी जो गिरी, वन, लता, पर्वत, गुफाओं, इन सब का स्मरण करेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मतलब भगवान अपने मुखारविंद से कह के गए कि ये जो कथा जहाँ पर घटी है, ये जो स्थान है, उसको अभी जो स्मरण करेगा, एक एक चीज के विषय में भगवान ने कहा, इसलिए जिस पर्वत पर, जिस सरोवर पर, जिस वन में ये घटना हुई थी, जहाँ भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया था, तो अब क्या है, यहाँ शुकदेव गोस्वामी उस साइट का वर्णन कर रहे हैं, पूरा वहाँ का जो सीन है ना वो अभी हमें दिखाएंगे। तो पहले वो सारी सीन के बारे में ये शुकदेव गोस्वामी हमें बताएंगे, क्योंकि साक्षात भगवान ने अपने श्रीमुख से बात कही है कि भगवान ने यहाँ तक कहा है कि गजेंद्र जिस वन में रहते थे, वहाँ के बांस का, लता का, बांस का, झाड़ का, पर्वत का भी यदि कोई स्मरण करेगा तो वो सब पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, इसलिए शुकदेव गोस्वामी ये सारी सीन का बहुत ही डिटेल से वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में भक्तों, यह वो स्थान है जहाँ, जिस स्थान का भी हम वर्णन पढ़ रहे हैं, वो स्थान है जहाँ पर अभी भगवान आने वाले हैं, और भगवान आकर इस जगह पर लीला कर रहे हैं। तो ये कितना महान स्थान है, तो उसकी महिमा का बखान तो होना ही चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा एक्टर हो, कहीं पर एक सीन, मतलब उसको करना हो, तो वो जो स्टेज बनाया जाता है उसके लिए, वो जितना बड़ा एक्टर होता है ना उतना ही बड़ा मंच होता है, उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, इतना ही सुंदर इसको बनाते हैं। तो क्योंकि अभी संसार के सबसे बड़े लीलाधर यहाँ पर लीला करने वाले हैं, तो उस स्टेज का, उस रंगमंच का यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से वर्णन करेंगे। मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। चैप्टर 8 वर्स नंबर 1। श्री शुक उवाच। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीत् गिरिवरो राजन्स् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजना युतमुच्छ्रितः। आसीत् गिरिवरो राजन्स् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजना युतम उच्छ्रितः। शुकदेव गोस्वामी कहते आसीत् गिरिवरो राजन्। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे राजन, गिरिवरो मतलब वर कहते हैं बहुत बड़ा, गिरि कहते हैं पर्वत को, एक बहुत बड़ा पर्वत है, आसीत मतलब है, वो त्रिकूट इति विश्रुतः, ये बहुत ज्यादा विख्यात है। विश्रुतः मतलब सब लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है, बहुत ही विख्यात है, बहुत फेमस है। अभी उसको सब जानते हैं, देवता जानते हैं, गंधर्व जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अप्सराएं, गंधर्व, नाग, किन्नर सब वहां पर आते कीड़ा करने के लिए, खाली मनुष्यों को छोड़कर। ये मनुष्य लोग को कुछ आगे पीछे का पता नहीं, दूसरे लोगों में क्या है, दूसरे जगहों पे क्या क्या है, कुछ नहीं पता। बस वो मनुष्य तो इस संसार में ही अपना घर बड़े से बड़ा बना कर एक गाड़ी लेकर उसी में समझता है मैं बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हूँ। उसको कुछ पता नहीं होता है बाकी संसार में भगवान ने जो ब्रह्मांड बनाया वो कितने विख्यात है, कितने विश्रुत है। तो ये कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, राज त्रिकूट इति विश्रुत, उसका नाम है त्रिकूट, एक बहुत बड़ा पर्वत है जो बहुत विख्यात है, उसका नाम त्रिकूट है। और क्षीरोदेनावृत, क्षीरोदेना यानी क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, क्षीर समुद्र है ना, चारों तरफ है और बीच में ये पर्वत है, कितना सुंदर होगा। और जो कि क्षीर समुद्र जब लहरें आ रही होंगी तो उससे टकरा रही होंगी, आगे सारा दृश्य दिखाएंगे अभी। और श्रीमान, श्रीमान मतलब श्री से युक्त है, चारों ओर क्षीर समुद्र है, बीच में ये त्रिकूट पर्वत है, बहुत सुंदर है। और योजना युतम उच्छ्रितः, योजना मतलब 10,000, युतम मतलब 10,000 योजन ऊपर है, 10,000 योजन ऊंचा है, मतलब श्रुतम मतलब बहुत लंबा है, 10,000 योजन तक, 10,000 एक योजन जो है वो 8 माइल तक है। तो यानी कि ये कितना ऊंचा होगा, 80,000 माइल ऊंचा, 80,000 माइल कितना ऊंचा होगा। तो हमें ऐसा लगता है इतना ऊंचा कैसे होगा, लेकिन भगवान अपनी प्रकृति में ऐसी ऐसी विचित्र वस्तुएं बनाते हैं कि एक मनुष्य की जो छोटी सी बुद्धि है उसको समझ नहीं पाती। अनुवाद, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है, यह 10,000 योजन यानी 80,000 माइल्स ऊंचा है, चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत ही रमणीक है, बहुत ही सुंदर लगता है। आगे कहते हैं, तावता विस्तृतः पर्यत त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधम् दिशः कं रोचयन्नास्ति रोप्यायस हरिर्मये अन्येष् कुकुम्भः सर्वा रत्नधातु विचित्रतय नाना ध्रुमलता गुल्मय निर्घोषेर्निर्जरांभसाम् तावता विस्तृतः पर्य त्रिविशृङ्गै पयोनिधिम् विशाखं रोचयन्नास्ति रोप्ययास हरिणमये अन्यैश्च कुकुम्भः सर्वा रत्नधातु विचित्रितै नानाद्रुमलता गुल्मय निर्घोषैर्निर्जरांभसाम् तावता विस्तृतः पर्यत् त्रिभिशृङ्गैः पयोनिधिम् दिशः खं रोचयन्नास्ति रौप्ययाय सहिर्णम्यै अन्यैश्च कुकुम्भः सर्वा रत्नधातु विचित्रितै नानाध्रुमलता गुल्मर् निर्गोषैर्निर्जरांभसाम्।
आगे कहते हैं तावता विस्तृत, तावता मतलब उतना ही, जितना 80,000 योजन ऊपर था उतना ही विस्तृत है, उतना ही फैला, ऐसा नहीं लंबा लंबा एकदम खाली खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं, वो उतना ही फैला हुआ है। 80,000 योजन लंबा और 80,000 योजन फैला हुआ है, विस्तृत है। पर्य त्रिभी, और आगे कहते हैं त्रिभी शिंगय, शिंगय मतलब उनकी, उसको त्रिकूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी बहुत ही सुंदर तीन शिखर हैं। शिखर मतलब चोटियां, वैसे तो उसकी बहुत सारी चोटियां, अभी 80,000 जब वो फैला हुआ होगा तो उसकी कितनी सारी चोटियां छोटी छोटी बनी हुई होंगी ना, शिखर बोलते हैं उसको। लेकिन तीन उसकी बहुत ही विचित्र शिंगर है, बहुत। पयोनिधिम का मतलब होता है ये क्षीर सागर में एक द्वीप में स्थित है, एक आइलैंड है क्षीर सागर में, और वहां पर ये इतना सुंदर पर्वत है। और आगे उसके विषय में और भी बता रहे हैं, दिशह खम रोचयन, रोचयन नास्ते मतलब दिशह, ये इतना सुंदर है कि जो सारी दिशाएं हैं और जो सारा आकाश खम है वो सब उसके कारण शोभायमान होता है। रोचयन नास्ते मतलब बहुत ज्यादा सुहाना लगता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो तीन शिखरे हैं रोप्ययास हिरण्मय, रोप्य मतलब चांदी और अस अयस मतलब लोहा और हिरण्मय मतलब सोना, मतलब उसकी जो तीन शिखरे हैं, एक चोटी सोने की है, एक दूसरी शिखर जो है वो लोहे की है और तीसरी सोने की है, एक चांदी की, चांदी सोने और लोहे की तीन शिखर हैं, तो उसमें से इतना ज्यादा शाइन आ रहा होता है क्योंकि सूर्य जब तपता है, इतना ऊपर है ये 80 योजन, तो ये इतना सुंदर लगता है और सारी दिशाओं को ऐसे जगमग करा रहा होता है, सारी जहां के यहाँ वातावरण है ना इस पर्वत की वजह से बहुत ही रुचिकर लगने लगता है। और आगे कहते हैं खाली इसकी तीन शिखर ही नहीं, अन्येश्च कुकुम्भः सर्वा, और भी इसकी दूसरी भी शिखरे हैं, और वो कैसे बनी हुई है, सर्वा रत्न धातु विचित्रतय, वो बहुत ही सुंदर रत्नों से, धातु से और बहुत ही सुंदर हीरों मणियों से जड़ी हुई है, इतनी सुंदर है। इन तीन शिखरों के अलावा जो अन्य शिखरें हैं वो रत्नों से और धातुओं से बनी हुई हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, नाना ध्रुम लता गुप्त है, इसके अंदर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर ध्रुमलता मतलब पौधे हैं, उसके अंदर लताएं हैं और गुल्मय हैं यानी झाड़ियां हैं। और इसके बाद कहते हैं निर्घोष है, कि जब पानी के झरने हैं ना, निर्जरस अंबसा, अंबसा कहते हैं जल को, जल के झरने जब गिर रहे होते हैं तो इतनी सुंदर ध्वनि हो रही होती है, इतना प्यारा लग रहा होता है। एक तो इतनी सुंदर यहाँ पर, इतना सुंदर ये पहाड़ है, उसकी चोटियां इतनी सुंदर हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हैं, पूरा वातावरण शोभायमान हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारी लताएं हैं, झाड़ियां हैं और पानी के झरने उसमें से गिर रहे होते हैं। अनुवाद: पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील तक है। इसकी तीन प्रमुख शिखर जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी हुई हैं, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण हैं और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सचावनिच्यमानांग्री समन्तात्पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकताश्मभिः सचावनिच्यमानांग्री समन्तात्पय ऊर्मिभिः करोति श्यामला भूमि हरिन्मरकताश्मभिः। वे कहते सचा सच मतलब वह जो पर्वत है वो अवनिच्यमानांग्री, अंग्री कहते हैं पांव को, है ना, और ये जो पर्वत की जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसके विषय में कह रहे हैं कि क्योंकि ये क्षीर सागर के समन्तात का मतलब है चारों ओर से, पाय ओर में भी दूध की लहरों से, अब चारों ओर से क्योंकि दूध की लहरें आ रही हैं, दूध का समुद्र है तो लहरें भी दूध की होंगी ना, तो दूध की समुद्र की लहरें जब आती हैं तो बीच में पर्वत है, तो पर्वत की जो चरण है ना तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि क्षीर समुद्र इस पर्वत के चरण पखार रहा है, यानी इसके चरणों का अभिषेक कर रहा है अपने दूध के साथ। तो दूध की लहरें आ रही हैं और उसके चरणों से टकरा रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये समुद्र जो क्षीर सागर है वो इसका अभिषेक कर रहा है। और उसके साथ साथ बता रहे करोति श्यामला भूमि, और इस पर्वत के कारण ये पूरा जो आइलैंड है ना वो श्यामल बन रहा है, ऐसा लग रहा है। है तो देखो दूध सागर है जो क्षीर सागर, उसके आसपास जितने भी आइलैंड्स होते हैं या पर्वत होते हैं जो भी होते हैं ना वो सफेद कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि वो पूरे एरिया को श्यामल कर रहे हैं, अर्थात वो बहुत ही ग्रीन कलर का, जो नहीं घनघोर नीले कलर का उसको बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हरिन्मरकताश्मभिः, क्योंकि वहां पर जो चट्टाने हैं वो हरे कलर की हैं। हरित का मतलब होता है हरी कलर की, और हरा और नीला मिक्स कलर होता है ना, उस कलर की चट्टाने हैं। तो वो कलर की चट्टानों का कलर जब क्योंकि वो चट्टाने किसकी बनी हुई है, वो कह मरकता मणि की बनी हुई है। अब जो मणि होती है उसमें से शाइन निकल रही है, ठीक है, जब धूप पड़ती है या कुछ भी शाइन निकल रही होती है तो सारे एरिया को मणि की तरह जगमग करा, करोति श्यामलां भूमि, वो पूरे एरिया को मणि की तरह चमका रहा है, श्यामल कर रहा है, क्योंकि उसकी चट्टाने जो है वो मणि की बनी हुई है। तो जो श्वेत पर्वत है या जो श्वेत एरिया है जो एकदम उज्ज्वल है वो भी रंगीन दिख रहा है। अनुवाद: पर्वत की तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो आठों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मणियां कैसे उत्पन्न हो रही हैं, जब लहरें आ रही है ना दूध की और पर्वत से टकराती हैं, तो फिर बाद में ये मणियां बन जाती हैं, जो फुहारे निकलती हैं वो मणियां बन जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है समुद्र कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है क्षीर सागर, देखो समुद्र दूध का भी होता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हम तो यहाँ संसार में रहते हैं, खाली खारे पानी के समुद्र के बारे में जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत से हमें पता चलता है बहुत तरह के समुद्र होते हैं। दूध का सागर होता है, कहीं सुरा का सागर होता है, तो कहीं घी का सागर होता है, धृत के घी को तेल या मीठे जल का सागर होता है, यहाँ तक कि जूसेस का भी सागर होता है। इस तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। आजकल के साइंसदान ये नहीं कह सकते कि नहीं ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल सीमित है। वास्तव में शास्त्र हमें बताता है कि हमसे बहुत बहुत हायर लोग हैं। ये लोग संसार में सिर्फ ये पृथ्वी लोक ही नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी लोक के वासी इतने मंद बुद्धि हैं, जिस प्रकार से उन लोग अभी सूर्य को नहीं देखता तो बोलता है सूर्य नहीं है, उसी प्रकार इस लोक के वासियों ने देखा नहीं है, यहाँ के विज्ञानियों ने, यहाँ के साइंटिस्ट्स ने देखी नहीं है दूसरे लोग, तो फिर वो क्या कहते हैं, दूसरे लोकों में कोई जीवन नहीं है। बल्कि अगर हम शास्त्र में देखते हैं तो दूसरे लोक हैं, वहां पर जीवन है और वहां के प्राणी हमसे कई अधिक सुंदर हैं, बलवान हैं, बहुत अधिक ज्ञानी हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। तो हमें यहां से आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो, यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी पूरी जानकारी नहीं बता सकते। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वतों की घाटियां दुग्ध से प्रक्षालित हों तो उनमें मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर ले। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये साइंसदान जो है ना आजकल के सिर्फ भोंक रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, कोई इनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि भगवान के इन कार्यकलापों की नकल कर सकें या उनको चुनौती दे सकें, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करते रहते हैं अपने जीवन को, है ना। भगवान शास्त्र में लिखा हुआ है सब कुछ, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि से अनुमान लगाते हैं और इसी तरह से टाइम वेस्ट करते हैं अपना भी और अन्य साधारण जनता का। आगे शुकदेव गोस्वामी अत्यंत सुंदर रीति से इस पर्वत की कंदराओं का वर्णन कर रहे हैं। कंदरा माना जो गुफाएं है ना पर्वत में, भगवान ने गुफाओं का भी नाम लिया। भगवान ने कहा है, आगे हम पढ़ेंगे, कंदर जो इनकी गुफाओं के विषय में भी चर्चा करता उसके भी अपराध क्षमा कर देता हूँ और अपना प्रेम उनको प्रदान करता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोर गए किन्नरैरप्सरोर्भिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः सिद्धचारण गंधर्वै विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः सिद्धचारण गंधर्वै विद्याधर महोर गए किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरः। तो यहाँ पर कौन कौन लोग आकर विहार कर रहे हैं उनका नाम गिना रहे हैं। सिद्ध यानी सिद्ध लोक के जो वासी हैं वो, चारण यानी चारण लोक के वासी हैं, गंधर्व यानी जो गंधर्व लोक में रहते हैं, विद्याधर यानी विद्याधर जो विद्याधर लोक के वासी हैं, महा उर्गय मतलब सर्प लोक के जो वासी हैं वो भी वहां पर, किन्नर यानी जो गान इत्यादि करते हैं, अप्सराएं जो स्वर्ग में नृत्य करती हैं,
और क्रीडत भी, वो सब खेल कूद में यहाँ पर आके करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। जुष्ट विलास में लगे कंदर्प यानी गुफाओं में, सारे लोग जो है ना, चाहे वो सिद्ध लोग हों, चाहे गंधर्व लोग हों, चाहे किन्नर लोग हों, चाहे सर्प लोग हों, सब लोग यहाँ पर आकर मजा कर रहे हैं। एक मनुष्यों का नाम नहीं दिया, मनुष्यों को अपने लोक पृथ्वी लोक के अतिरिक्त और कुछ पता ही नहीं है, और ये मनुष्य लोग को दूसरे किसी है ना लोक में जाने भी नहीं दिया जाता। मनुष्य लोग जो है वो इतने थर्ड क्लास है, यहाँ पर बता है इसलिए जा रहा है कि उनको तो हर जगह पर पता क्या चाहिए होगा, बोलेंगे भाई पार्किंग, अभी वो जाएंगे तो उनके लिए पार्किंग चाहिए, अपना वाहन कहाँ पर खड़ा करें, उनको रेस्ट रूम चाहिए, उनको किचन चाहिए, उनको ये जो जितने भी यहाँ पर सिद्ध इत्यादि बताए गए ना, उनके जो वाहन है वो हवा में खड़े हो जाते हैं, उनको किसी भी भौतिक वस्तु की, खाने पीने की इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मनुष्य को कितना गुरूर है कि हम कितने एडवांस हैं, हम कितने उच्च कोटि के हैं, तो भले ही उनके अंदर वो सब सामर्थ्य, मनुष्य जीवन ऐसा है कि इसमें आकर आप ऐसा कार्य कर सकते हो कि आप किसी भी लोक में जा सकते हो। ये एक जंक्शन की तरह है, जैसे आप ऊपर जाना चाहो, नीचे जाना चाहो, ऊपर उससे ऊपर जाना चाहो, भगवान के लोक को प्राप्त करना चाहो, आप कर इसी लोक में ही एक वाहन की तरह है। जैसे एक वाहन होता है आपके पास बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का वाहन हो, लेकिन वाहन में बैठ जाना तो पर्याप्त नहीं है ना, वाहन का सही फायदा तो तब उठाओगे जब इस वाहन में बैठकर आप किसी उच्च स्थान में जाओगे तब ना, लेकिन आप उसी वाहन में बैठकर आनंद उठाना चाहते हो, ये कहाँ की वो है बुद्धिमानता है। जैसे आप सोचो मैं एरोप्लेन में बैठू, एरोप्लेन में बैठ जाओ और एरोप्लेन को चलाओ नहीं, कुछ भी एरोप्लेन चले नहीं, तो क्या उस वो आप इसमें आपकी सक्सेस है? एरोप्लेन में बैठकर यदि आप दूसरे कंट्री में जाते हो तब आपने सही उसका यूज किया ना, उसी तरह मनुष्य जन्म भी एक ऐसा वाहन है जिसमें बैठकर आप किधर बड़े से बड़े लोक में जा सकते हो। लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है, इतना बुद्धिहीन है, वो समझता है कि बस इसी मनुष्य चोले में बैठकर मुझे आनंद करना है, उसी एरोप्लेन में बैठकर मुझे खाना है, बार बार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन उसमें बैठकर मुझे अपने वास्तविक गोल को प्राप्त करना है ये नहीं सोचता। अनुवाद, उच्च लोकों के वासी सिद्ध चराण गंधर्व विद्याधर उरग किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अभी ये पर्वत है और यहाँ पर शेर सागर है, सारे जो स्वर्ग लोक के वासी यहाँ पर जाते, श्रील प्रभुपाद जी बोलते जिस प्रकार हम लोग खारे पानी के समुद्र में जाकर मजा करते हैं ना, वो लोग यहाँ पर आके आनंद करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस प्रकार सामान्य लोग खारे सागर में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उच्च लोगों के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं, वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की क्रियाओं का आनंद लेते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यत्र संगीत सन्नादय नदत गुहम अमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशंकया यत्र संगीत सन्नादैर् नदत् गुहममर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशंकया। यत्र संगीत सन्नादैर्, यत्र मतलब वो सब अप्सराएं और सब स्वर्ग लोक के गंधर्व लोक के सारे जब यहाँ पर आए और एंजॉय कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो क्या वो सब संगीत बजाते हैं। वास्तव में ये एक जीव मात्र की का स्टाइल है, जब वो संतुष्ट होता है, जब खुश होता है तो गाता है, तो वो सब गाते हैं, संगीत करते हैं। संगीत सन्नाद है और उससे जो ध्वनि निकलती है, अब जाहिर सी बात है गंधर्व मृदंग बजा रहे हैं और अप्सराएं नाच रही हैं, तो कितना सुंदर वातावरण वहां पर होगा और कितनी
तेज ध्वनि वहां पर उत्पन्न हो रही होगी, क्योंकि ध्वनि कैसे गुफाओं में आवाज कैसे गूंजती है, तो उस तरह नदत प्रतिध्वनि गुहम गुफाओं में क्या जब ध्वनि गूंजती है तो वापस से वो वाली आवाज गरज कर हमारे पास आती है। और जब यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर श्लाघिनः परशंकया, तो फिर जो हरयः, हरयः मतलब शेर, अभी गर्जन्ति हरयः, तो वो फिर ये ध्वनि को सुनकर जो शेर है ना वो गरजने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। क्यों दहाड़ते हैं? क्योंकि श्लाघिनः वो शेर अपने ऊपर अहंकार करते हैं कि हमारी ध्वनि बहुत तेज है, और परशंकया वो सोचते हैं कि शायद दूसरा कोई शेर है वो गरज रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये आवाज जो निकल रही, क्योंकि मृदंग की अब गुफा में कोई जोर जोर से मृदंग बजाएगा तो उसकी कैसी आवाज आएगी, तो उनको ऐसा लगता है शायद कोई और दूसरा शेर दहाड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको पराजित करने के लिए मैं खुद और जोर से दहाड़ रहा हूँ, फिर वो और जोर से दहाड़ता है तो कोई दूसरा वास्तव वाला शेर सुन लेता है तो वो शेर है ना उससे भी जोर से दहाड़ता है, उस तरह से पूरी गुफाओं में तेज तेज आवाजें गूंजने लगती है।
अनुवाद: गुफा में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनि के कारण वहां के सिंह जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है असहय ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करने लगते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं उच्चतर लोकों में ना केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी हैं। वहाँ वृक्ष हैं, वहाँ की धरती मरकतों से बनी हुई है, ऐसी है भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है केशव त्वया जगत विचित्र हे केशव। आपकी सृष्टि रंग बिरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भू विज्ञानी वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथाकथित विज्ञानी अन्य लोक के विषय में मनोकल्पना करते हैं, किंतु उनकी विविधताओं का अनुमान ना लगा पाने के कारण वे झूठे यह कल्पना करते हैं कि इस लोक को छोड़कर अन्य सारे लोक शून्य निर्जन तथा धूल से भरे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ के साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी वो नहीं होते हैं जो बायोलॉजिस्ट और ये सब सोचते हैं कि क्योंकि वो सही तरह से कल्पना लगा नहीं सकते हैं, इसलिए वो झूठे झूठे में यही सोचते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, बाकी जितने भी लोग हैं वहां पर शून्य है, निर्जन है, वहां पर धूल है, खाली कंकर है, मगर वहां पर जीवन नहीं है। तो इस तरह वे ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से गर्वित रहते हैं और अपनी ही जैसी बुद्धि वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। अभी शीला प्रभुपाद जी एक खास बात बता रहे हैं कि उन लोगों को विद्वान केवल बुद्धू ही समझ, उनके जैसे जो बुद्ध होंगे ना जो वास्तविक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित होंगे, जो दूसरे शास्त्रीय ज्ञान या फिर वास्तविक दूसरे लोगों के ज्ञान के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ होंगे, वही बोलेंगे हाँ ये कितना बड़ा ज्ञानी है, ये कितना बड़ा साइंटिस्ट है, ये उनको तो कुछ भी नहीं पता तो वो कहाँ के ज्ञानी हुए। तो शीला प्रभुपाद जी ने बोला कि वे अपने ही जैसे बुद्धि वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.3.19 में कहा गया। क्या कहा गया? श्वविद्वराहोष्ट्र खराय संस्तुतः पुरुष पशु, यानी भौतिकतावादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते सुअर ऊंट तथा गधे करते हैं। यहाँ पर जो है उनकी प्रशंसा क्या करनी, सिर्फ भौतिक जीवन खाली जो जीते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवतम में लिखा हुआ है उनकी प्रशंसा खाली कुत्ते सुअर ऊंट तथा गधे करते हैं, जो स्वयं भी बड़े पशु हैं। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान को नहीं जानते हैं तो फिर
मनुष्य रूपेण मृगार चरन्ति, वो मनुष्य जैसे तो दिखते हैं, भले रूप तो उनको मनुष्य मिल गया है, लेकिन मनुष्य जीवन का वास्तविक जो लक्षण है वो उनकी नगर उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर आचरण कैसे हैं? मृगार चरन्ति, उनके आचरण तो मृग की तरह है, सुअर और कुत्तों की तरह है, तो फिर उनको है ना मनुष्य कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने कहा वो तो स्वयं बड़े पशु हैं, मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने आपको ज्ञान दिया है ना, जो आज के साइंटिस्ट ने, आज के बायोलॉजिस्ट ने, केमिस्ट ने जो 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 ज्ञान दिया है, आपको उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वास्तविक ज्ञान हमें कोई वास्तविक सिद्ध व्यक्ति दे सकता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वही दे सकता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्र कहता है, आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महाजनों ये न गता सपन था, जो महाजन बताते हैं वही वास्तविक हमारा कर्तव्य है, वही वास्तविकता है। हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के उपदेश का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और सुखदेव गोस्वामी उनमें से एक है। ये किसमें बताया गया? श्रीमद् भागवतम 6.3.20 में 12 महाजन हैं और वो जो बात बता रहे हैं उनके उपदेश का पालन ही करना एक मनुष्य जीवन जीव का वास्तविक कर्तव्य है। कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म अयम प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वयम। वैयासकिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सुखदेव गोस्वामी यानी वेद व्यास जी के पुत्र। और कौन कौन है? स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी, नारद उनके पुत्र नारद, शंभु भगवान शिव, कुमार चार कुमार, कपिल मुनि और मनु, उसके अलावा प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और वेद व्यास जी और यमराज जी, ये 12 महाजन हैं। और ये जो उपदेश देते हैं वो ही वास्तविक उपदेश होता है, उसी को हमें ग्रहण करना है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के लोग तो सिर्फ भौतिक ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इन महाजनों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं वैयासिकी ही सुखदेव गोस्वामी हैं, वे जो कुछ भी कहते हैं वह तथ्यात्मिक है, यही पूर्ण ज्ञान है, और उन्होंने जो बताया है वही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है वो वस्तु जिसको जानकर हमारा कल्याण हो। आजकल का भौतिक ज्ञान प्राप्त करके किसी का वास्तविक कल्याण नहीं होता है, इसलिए हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजनों के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे हमारे जीवन को वास्तविक कल्याण और वास्तविक जीवन की सद्गति प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। देखते हैं आगे, यहाँ इतनी सुंदर वन में जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पर्वत है और भगवान किस प्रकार से अपनी लीला करते हैं। हरे कृष्णा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।